तो हम सबके बीच में हमारे आदरणीय राजयोगिनी शशि दीदी जी पहुंच चुके हैं। हम एक हाथ हिलाकर दीदी का स्वागत करते हैं, सत्कार करते हैं, अभिनंदन करते हैं। दीदी हमारे यज्ञ के जॉइंट एडमिनिस्ट्रेटिव हेड हैं। कंधों पर बहुत सारी जिम्मेवारियां हैं, लेकिन खास आपके लिए नीचे की मीटिंग भी छोड़कर आपके बीच में हाजिर हैं। हाँ, तो दीदी का बहुत बहुत पुनः पुनः हम स्वागत करते हैं कि आपका अपना मीटिंग छोड़कर भी हमारे लिए आए हैं। तो बाबा की, मम्मा की, जो दादियों की दीदी ने पालना ली है, उसकी थोड़ी आप सभी को चखाचुखी कराएंगे, भासना दिलाएंगे और उसके बाद स्वागत टोली भी देंगे। तो सुनते हैं दीदी को। ओम शांति।
ओम शांति। मधुबन तपस्वी भूमि, हम सब के अपनी प्यारी प्यारी भूमि, अपने ही घर में, अपने ही बाप दादा द्वारा, अपनी ही दादियों द्वारा, अपने ही मधुबन निवासी भाई बहनों के द्वारा, अपने ही घर में अपनों के द्वारा आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। और स्वागत के साथ साथ आज का ये महीना भी बहुत सुंदर है। प्यारी प्यारी मातेश्वरी का मास है और मातेश्वरी जी के साथ के अनुभव और मातेश्वरी जी के बारे में भी आप बहुत कुछ सुनते आ रहे हैं और बहुत सुंदर अनुभव करते आ रहे हैं। आज तो इस भट्टी के अंदर त्रिवेणी का ही संगम है, अहमदाबाद, अंबावाड़ी और राउरकेला और कहाँ के हैं, अलग अलग स्थानों के भाई बहने भट्टी करने के लिए आए हैं। तो भट्टी करने के लिए जो भी आए हैं, हर एक को बहुत सुंदर सौभाग्य प्राप्त हुआ है। अहमदाबाद अंबावाड़ी वाले तो पता नहीं कितनी भट्टियाँ की होंगी, करते ही चले आ रहे हैं, करते ही चले आ रहे हैं, फिर भी यहाँ भट्टी करने के लिए आए हैं। बाबा तो आपका स्वागत करते हैं, क्योंकि आपकी जो टीचर है वो सारा साल तो भट्टियाँ ही कराती हैं, तो सारा साल भट्टियाँ कराती हैं, तो आप सब ने तो भट्टियाँ ही भट्टियाँ की होंगी। जब देखो मधुबन में भट्टी करा रही हैं, जब देखो तो फलाने स्थान पर गई हैं, जब देखो तो फलाने स्थान पर गई हैं, तो फिर भी आप यहाँ आए। हमें ये मन में क्वेश्चन आ रहा था, जिन्होंने इतनी भट्टियाँ की और इतने आराम से रहने वाले, आराम से चलने वाले, ज्ञान और योग की क्लासेस से तो ओवर भरपूर हैं, फिर यहाँ पर क्यों भट्टी करने के लिए आए? अहमदाबाद अंबावाड़ी वाले बोले, दूसरे ने, बाबा का ओरिजिनल है। अरे ये बोलो ना, हमारा घर है ये बोलो हमारा घर है। और बाबा ने देखो, अभी कुछ दिन पहले भी बाबा ने कहा, तपस्या करना अर्थात मौज मनाना, अर्थात खुशी के गीत गाना और नाचना और सदा खुशी में रहना। तो जब बाबा ने कहा नाचना, तो मैं गुजरात वालों के लिए ही सोच रही थी कि गुजरात वालों को नाचना कहो या ना कहो, वो तो नाचते ही रहते। और दूसरा क्या होता है कि कभी कभी हम देखते हैं हमारी बुजुर्ग माताएं, भाई जो चल नहीं सकते हैं, जिन्हें थोड़ी टांग में तकलीफ है, गरबा का गीत बजा दो। सबसे बेस्ट डांस गरबा रास उन्होंने ही करना है। हम देख के बहुत खुश होते हैं, गरबा का गीत बजा, हमारे बुजुर्ग भाई बहने इतना खुशी में डांस करते हैं और उनके स्टेप्स भी देखने जैसे होते हैं, बिल्कुल एक्यूरेट होते हैं, बिल्कुल उनके एक्शन में भी एक्यूरेसी होती है, बाकी जो सीखे हुए होते कितना भी वो एक्यूरेट करें लेकिन कुछ न कुछ स्लाइटली थोड़ा डिफरेंस तो आ ही जाता है। तो गुजरात को तो बाबा ने पहले से ही कह दिया है खुशी में नाचने गाने और खुशी का अनुभव करने वाले, और अहमदाबाद के ऊपर तो प्यारे साकार बाबा की शुरू से लेकर के बहुत बड़ी नज़र रही है। साकार बाबा ने ही अहमदाबाद का सेंटर खुलवाया और वहाँ पर फिर लास्ट में सरला दीदी को वहाँ बिठाया। और अहमदाबाद की तो विशेषता यही रही है कि जो भी ब्राह्मण भाई बहने और गुजरात से साउथ इंडिया की तरफ जाते या फिर बॉम्बे की तरफ जाते तो ट्रेन पर ऐसा होता था इतनों को खाना पहुंचाना है, इतने आ रहे हैं, ट्रेन लेट हो रही है, तो हमारी सरला दीदी इतना प्यार से सबकी सेवा करती, सबकी खातिरी करती, रात रात जाग करके स्टेशन पर जा करके सबकी खातिरी करती। और दूसरी बात हमने देखी बाबा जब अव्यक्त हुए तो यहाँ मधुबन के अंदर कई प्रोग्राम्स होने लगे, तो दादी प्रकाश मणि जी सरला दीदी अहमदाबाद और गुजरात के ऊपर हम सदा बहुत ही नज़दीक का अनुभव करते हैं। बाबा ने कहा ये अहमदाबाद क्या है, मधुबन का दूसरा कमरा है, कमरा है ना। तो फिर जब भी कुछ होता था तो दादी पहले करेगी, सरला आज हम ये बड़ा प्रोग्राम करने जा रहे हैं, दीदी कहती हाँ दादी हम आपके पास जो कहेंगे जितने सेवाधारी चाहिए जो आए चाहिए सबके सब आते रहे। तो वो बीज बाबा ने गुजरात की धरनी में ऐसा डलवाया तो वो बीज अभी दिन प्रतिदिन बढ़ता ही जाता है और बढ़ ही रहा है। और नाम मात्र तो कहेंगे ये सेंटर है ये सेंटर है, लेकिन ये सब सेंटर बाबा के हैं और बाबा की ही पालना से बाबा के शुभ संकल्पों से ही पल रहे हैं। और राहुल केला के कौन है जो हाथ खड़ा करे, काफी सारे आए हैं ना। तो राहुल केला भी कहाँ पड़ता है, ये उड़ीसा में पड़ता है। अच्छा, और राहुल केला से भी है तो बहुत दूर, और इतनी दूर से आप सभी लंबी यात्रा करके आए हैं। और उड़ीसा की धरनी तो बाबा हमेशा कहते हैं सेवा के क्षेत्र में भी बहुत अच्छी रही है, और उड़ीसा के भाई बहने बाबा के इतने प्यारे लाडले बच्चे हैं और सदा ही बाप के साथ का अनुभव करते रहते हैं। और बाकी तो सब आप सबको ऐसी निमित टीचर बहने मिली हैं जो कि हर समय बाबा के साथ का अनुभव कराती रहती हैं। और भी बाकी जो है अन्य स्थानों से वो हाथ खड़ा करें। अच्छा वेलकम, आपका भी बाबा के घर में बहुत बहुत बट्टी में स्वागत है। अब आप सब बट्टी करने के लिए आए हैं तो बट्टी के अंदर बाबा ने हमको ऐसे स्थान पर बट्टी करने का भाग्य दिया है क्योंकि बाबा ने कहा है कि आगे चल करके बाबा के बच्चे बढ़ते जाएंगे। साकार में भी बाबा कहते थे, साकार बाबा के टाइम पर 20-25 सेंटर थे, बाबा कहते थे देश विदेश के अंदर सेंटर खुलेगा, गली गली में सेंटर खुलेगा, बाबा के बच्चे बहुत बढ़ते जाएंगे। तो आप सबको बाबा ने शुभ संकल्पों से पहले से ही आप सबकी धरनी तैयार कर दी थी और आप सबको ही बाबा की शुभ संकल्पों ने यहाँ आने का बहुत सुंदर सौभाग्य दिया है। और जहाँ पर आप बट्टी कर रहे हैं आपने कहा कि बाबा का घर है, लेकिन जिस स्थान पर आप बट्टी करेंगे इस स्थान की बहुत बड़ी विशेषता है। वहाँ पर आप रिट्रीट सेंटर पर करते हैं, बड़े सुंदर सुंदर हॉल होते हैं, रहने की भी सुविधा अच्छी होती है, हर प्रकार से सुविधा होती है, लेकिन ये जो पांडव भवन का मेडिटेशन हॉल है इसकी बहुत बड़ी विशेषता है। जहाँ पर आप बैठे हैं ये हॉल नहीं है, बाबा के टाइम पर ये पहाड़ी था, और ये पहाड़ी पर ही बाबा के टाइम पर इस बगीचे की अंगूर की बेल यहाँ पहाड़ी तक थी। और इस अंगूर के प्यारे बाबा ने 24 जून को बाबा मम्मा अव्यक्त होने से पहले वो अंगूर, बड़ा बड़ा अंगूर, इतना बड़ा जिसके अंदर बीज शिवलिंग स्टाइल होता है, जिसके अंदर बीज है, प्यारी माँ के हाथ से सभी जो भी यहाँ पर भाई बहने थे सबको मम्मा के हाथ से टोली खिलाई थी। और ये वो पहाड़ी है जहाँ पर बाबा खुद बैठ करके तपस्या करते थे। आपने बाबा का एक फोटो देखा है ना, ऐसे तपस्या करते हुए बाबा खुद यहाँ बैठ के तपस्या करते थे, और सभी दादियाँ भी तपस्या यहीं करती थी, और गीत बजता था धरती को आकाश पुकारे, तो सब दौड़ दौड़ के आ जाते थे, दादियाँ भी सब सीनियर भाई बहने आ जाते थे और बाबा यहाँ पर तपस्या कराते थे। और बाबा कहते थे योग के सेमिनार करो, और आजकल सेमिनार जो करते बोलने के सेमिनार, बाबा कहते थे नहीं साइलेंस के सेमिनार करो। तो बाबा यहाँ बैठ करके तपस्या करते थे। फिर उस जब बाबा अव्यक्त हुए तो अव्यक्त बाप दादा पहले बाबा के कमरे में आते थे बच्चों से मिलने, फिर अव्यक्त बाप दादा बच्चों से मिलने हिस्ट्री हॉल में आते थे। और उसके बाद एक बार ऐसा हुआ कि बहुत बड़ा ग्रुप आ गया रहने के लिए, तो इधर ठहराया उधर ठहराया, कहीं पर टेंट लगाए कहीं पर कुछ किया, तो ये पांडव भवन के आंगन में ही बाबा के पद्रामणि की स्टेज, बाबा के उधर कमरे के बाहर ही नहीं, जो बाबा का ऑफिस उसके बाहर ही लगाई गई थी। और उस समय दो बार भोजन मिलता था, सुबह का नाश्ता और दोपहर का खाना 12 बजे के अंदर पूरा हो जाता था, और शाम का खाना 4 से 6 के बीच में, और 6 बजे सभी योग में बैठ जाते थे और बाबा के लिए पद्रामणि के लिए बाबा से मिलते थे। तो फिर मीटिंग किया गया, प्लान किया गया कुछ करना चाहिए, क्योंकि ओम शांति भवन की जगह भी नहीं थी, कुछ भी नहीं था, तो इस पहाड़ी को थोड़ा तोड़ करके समतल करके इसमें हॉल बनाया गया 1975 में। तो 1975 से अव्यक्त बाप दादा इस हॉल में आते रहे। तो ये हॉल डबल अनुभव कराता है, एक है साकार बाबा की तपस्वी भूमि, दूसरा है अव्यक्त बाप दादा के वरदानों की भूमि है, वरदानों का हाल है। अव्यक्त बाप दादा यहाँ बैठते थे और हमको तो बहुत अच्छा मौका मिलता था, हम बाबा के पास यहाँ बैठ जाते थे, अब तो बहुत दूर हो, ठीक है ना अब तो हम यहाँ बैठते थे, दादी भी यहाँ होती थी, बाबा कहाँ होता था, दादियाँ यहाँ, हम सब इधर बैठे होते थे, ये जगह, ये सारी जगह हमारी होती थी, हम सब इधर ही होते थे। तो अभी ये थल्ला बनाया ना स्टेज, उस समय तो नहीं था, और यहाँ पर कोई सोफा कुर्सी नहीं थी, सब के सब नीचे ही बैठते थे। लेकिन बाबा कहते समय आने पर बाबा तो बच्चों को हर प्रकार की सुविधा देते हैं, उसमें बड़ी दीदी के लिए एक कुर्सी एक सोफा रहता था, तो वो एक सिर्फ को सोफे पे बैठती थी, बाकी सब नीचे बैठते थे। तो ऐसे हॉल में बैठने का आपको तपस्या करने का मौका मिल रहा है। एक तो कई बार कहते हैं ना, अब कई हैं कहते उलहना देते हैं, हमने साकार बाबा को नहीं देखा। अब जिसने नहीं देखा वो हाथ खड़ा कर दे, कमा बाबा कहते मैं रोज बच्चों को देखता हूँ, मैं बच्चों के साथ हूँ, बच्चों का हाथ पकड़ के चलता हूँ, मैं बच्चों के सामने, और आप कहते नहीं देखा है, ऐसे कहेंगे क्या बाबा को? बाबा आते अमृत वेला मिलते हैं, बात करते, और आप कहते बाबा ने क्या कहा है? देखो शिव बाबा ब्रह्मा बाबा को पूछते हैं आपके बच्चे कब तैयार होंगे, ब्रह्मा बाबा कहते बहुत प्यार करते, कहते ये सब तैयार हो रहे हैं ना, कभी नहीं कहेंगे बच्चे शैतान हैं, पढ़ाई नहीं करते हैं, पुरुषार्थ ठीक नहीं करते हैं, पता नहीं सुस्त हो जाते हैं, आलसी बन जाते, ब्रह्मा बाबा कभी नहीं कहते। फिर ब्रह्मा बाबा बाशी बाबा को कहते हैं बच्चों को साथ का अनुभव करने दो ना, तो वो भी होता है। फिर कभी कभी बच्चे शिव बाबा को कहते बाबा वापिस कब चलेंगे, शिव बाबा कहते तुम क्या कहते मैं चला जाऊं, तुम यही चाहते हो कि मैं चला जाऊं? सारे क्लब के अंदर, सारे संगम के अंदर एक ही बार तो बाबा मिलता है। जितना टाइम मिले मिले, मौज करो। चाहे शरीर अपना काम करता रहे, बाबा कहते शरीर को तो दवा और दुआ से चलाते जाओ, चतिया लगा के चलते जाओ। कई जन्मों का शरीर है, तंग भी करता, वो अपना काम करता रहे, लेकिन आप तो बाबा से मिलन मनाते रहो। तो जब बाबा साकार में थे, क्योंकि हमको भी बाबा के साथ रहने का बहुत सुंदर कई महीने बाबा के साथ रहने का मौका मिला, तो जब बाबा साकार में थे, बाबा मुरली चलाते थे हिस्ट्री हॉल में, तो हिस्ट्री हॉल में मुरली चलाते चलाते बाबा कभी खड़े हो जाते थे। खड़े होकर के बाबा पूरा चक्कर लगाते थे हॉल में ही। जैसे ही चक्कर लगाए तो बाबा की दृष्टि पड़ते ही सारे के सारे ऐसा होता था वतन में पहुंच गए हैं, बैठे सामने जैसे सब फरिश्ते बन गए हैं। तो अभी भट्टी में भी क्या होगा, साकार बाबा आपके सामने आ जाएंगे। किसी ने आंख बंद किया, किसी ने उबासी दिया, किसी ने इधर देखा, किसी ने कुछ किया, तो बाबा आगे वाले को वरदान दे देंगे। बाबा को अच्छा नहीं लगता था, बाबा कहते थे किसके सामने बैठे हो, अगर उबासी आती तो पानी पी लो, सुस्ती को दूर कर लो, लेकिन सुस्त होकर के नहीं बैठो, एक्टिव होकर के बैठो। तो योग के टाइम भी आपको बहुत ध्यान देना पड़ेगा, कोई भी मुंह खोल करके उबासी नहीं दे। बाबा बहुत मैनर्स सिखाते थे। बाबा कहते थे रॉयल बाप के बच्चे हो, विश्व महाराजन बनने वाले हो। विश्व महाराजन कितने रॉयल होते हैं, रॉयल्टी से चलते हैं। तो इन बातों का बाबा बहुत ध्यान खिंचवाते थे। बाबा हर समय खुद भी बच्चों से रॉयल्टी से चलते थे। तो इस हॉल की तो एक तो ये विशेषता है, तो इसलिए आप सबको इस हॉल में बैठ करके विशेष योग करने का मौका मिल रहा है। फिर दूसरा है, कई भाई बहने हर बार कहते क्या करे बाबा, हमारा योग नहीं लगता। बाबा को याद करने बैठते हैं, ये बात याद आ जाती है, ये याद आ जाता है, या फिर कई माताएं आती हैं कहती हैं, कई माताएं आती हैं कहती हैं बाबा मेरे पति के बुद्धि का ताला खोल दो, मेरा बच्चा ऐसा है पढ़ाई नहीं करता। बाबा कहते मेरे को किस लिए बुलाया था, मुझे कहा था ना पतित पावन आओ, हमें पावन बना। बाबा को फिर ये भी अच्छा नहीं लगता है कभी कभी ना। परसों भी मुरली के अंदर बाबा ने कहा ना, वो गीत गाते रहे भक्ति में, मैं गुलाम तेरा, मैं गुलाम तेरा। तो बाबा को ये भी अच्छा नहीं लगता है कि मेरे सर्वशक्तिमान बाप के बच्चे और कहे मैं गुलाम तेरा, मैं गुलाम तेरा। बाबा तो राज्य भाग्य देने के लिए आते हैं। तो बाबा को इस प्रकार की बातें बिल्कुल अच्छी नहीं लगती थी। बाबा के पास कई नए नए बच्चे आते थे, बाबा को कहते थे बाबा हमें ना आशीर्वाद दो। बाबा कहते देखो देखो भगत आ गया, आशीर्वाद मांग रहा। बाप का बच्चा है, पूरा अधिकारी है, और ये आशीर्वाद मांगता। कई कहते थे बाबा आपकी कृपा होगी तब फिर हम आएंगे। बाबा कहते इसने अभी तक बाप को पहचाना नहीं है। फिर शुरू में जब बाबा से मिलने के लिए आते थे ना, तो बाबा क्या है, बाबा को देखते ही इतनी जबरदस्त पर्सनैलिटी थी बाबा की। बाबा को देखे चारों तरफ लाइट ही लाइट है, मन के कोई भी संकल्प थे ना बिल्कुल शांत हो जाते थे। कई भाई बहने आते थे तो बाबा पहला देखते ही बच्चों को एक प्रश्न पूछते थे, पहले कभी मिले हो, क्या जवाब देंगे आप, हैं क्या है बोलो, कल अब पहले। बाबा ऐसे नहीं सुनते थे, ऐसे रुखा रुखा जवाब दिया, बाबा पहले मिले थे, कल पहले मिले थे। बाबा उनकी शक्ल को देखते पहचान जाते थे, इसने सचमुच बाप को पहचाना है या नहीं पहचाना, इसका बाप से प्यार है या नहीं है, इसको वो स्मृति है या नहीं है। बाबा के पास जब आते थे ना, तो बाबा को देखते सब भूल जाते थे। तो बाबा को बहने पढ़ा करके आती थी कि बाबा पूछेंगे आपको जवाब देना, बाबा कल पहले मिले थे। बाबा के पास आते ना तो बाबा पूछते बच्चे पहले कभी मिले हो, नहीं बाबा हम तो कभी नहीं मिले हैं। अच्छा बाबा कहेंगे बच्चे पहले कभी मिले हो, वो सोचने लगेगा तो बाबा को तो ऐसा देखा ही नहीं हमने कभी, नहीं बाबा। फिर बाबा कहेंगे बच्चे याद करो पहले कभी मिले हो। हाँ बाबा, हमारी टीचर ने हमको बताया था कि बाबा ये प्रश्न पूछेंगे, आपको ये जवाब देना है। बाबा के सामने कोई गोलमोल नहीं कर सकता था। बाबा कहते तोते को पढ़ा के आई, तोता बैठ जाता नल पे और बोलता रहता है गंगाराम नल पे मत बैठना, बैठा हुआ नल पे है और बोलता है गंगाराम नल पे मत बैठना, तो ऐसे काम करता है। तो बाबा कहते हैं ये योग ज्ञान योग ऐसा नहीं है, ऊपर ऊपर सुन लिया, बहुत कुछ सुन लिया, हाँ बहुत अच्छा, हमने डायरियां भर ली और ये कर लिया। फिर जब योग का करते हैं ना, योग के टाइम पर भी क्या करते हैं, बहुत वंडरफुल बातें करते हैं। मैं बताऊं क्या करते हो, बाबा कहते ना 8 घंटा योग, तो कई भाई बहने बाबा को चार्ट लिख देते थे, बाबा हमने ना 12 घंटा योग किया। बाबा कहते थे इसको साइड में रख दो, हैं देखते ही नहीं थे बाबा। फिर कैसे 12 घंटा लिखते हैं, सुबह मैंने 4 से 4:45 योग किया, 3 बजे उठा था, 1/2 घंटा योग किया, फिर 4 से 4:45 योग किया, फिर मैंने 1/2 घंटा अलग टाइम निकाला, फिर मुरली क्लास के बाद भी 1/2 घंटा योग किया, मुरली से पहले भी 1/2 घंटा योग किया, फिर दिन को मैं टाइम निकाल के 15 मिनट योग किया। योग किया या गिनती किया, हैं गिनती करते रहते हैं सारा दिन, गिनती करते हैं, आदत पड़ी हुई ना पैसे गिनती कर करके रखने की, तो वो गिनती करते रहते, योग थोड़ी करते हैं। बाबा कहते योग का अर्थ होता है प्यार, योग का अर्थ है अनुभूति, योग का अर्थ है स्वरूप बनना, योग का अर्थ है हम बाबा के साथ के अनुभव करना, वो सब कुछ है, ना कि गिनती करते रहना, चार्ट भरते रहना और चार्ट भर करके लिख करके रख देना। जैसे कई बच्चे होते ना फटाफट कागज घुमाते जाएंगे कहेंगे हमने ये सारा कर लिया, ये वो योग नहीं है, ये वो है जो हमको विशेष अनुभव करने का योग है। फिर दूसरी बात मैं आपको एक कहानी सुनाती हूँ, ये कई बार सुनाई है, फिर से सुना रही, आप लोगों को नहीं सुनाई है। एक पहले जब बाबा फिर 1980 ये हॉल भी छोटा होने लगा तो 1983 में ओम शांति भवन का हॉल बना, वहाँ पर अव्यक्त बाप दादा आने लगे, तो उस समय बाबा से मिलने की विधि भी चेंज हो गई। बाबा की मुरली छुट्टी होती थी और ग्रुप ग्रुप को बाबा स्टेज पर बिठाते थे, और यहाँ तो बाबा एक एक से 10 मिनट 5 मिनट 3-3 मिनट बात भी करते थे, वहाँ पर ग्रुप से ही बाबा बात करते थे। तो ग्रुप में एक भाई था, कहता था कि मैं बाबा से प्रश्न पूछूंगा, बाबा मेरा योग नहीं लगता है। तो बाबा दृष्टि देते, सबको वरदान देते थे, तो बाबा ने उसको कहा सदा का सहज योगी। वो कहता मेरा योग नहीं लगता, बाबा उसको कहते हैं सदा का सहज योगी। तो सारे हंसने लगे, बाबा ने कहा क्या हुआ, कहा बाबा ये तो आपसे प्रश्न पूछने वाला है कि मेरा योग नहीं लगता। अच्छा, बाबा ने कहा अच्छा, तो बाबा ने कहा अच्छा यही तो कहता है, बाबा मैं आपको भूल जाता हूँ, बाबा मैं आपको कैसे याद करूँ, बाबा आज तो मैं अच्छी तरह से योग लगाऊंगा, आज मैं सेंटर पर जाऊंगा, बाबा के कमरे में बैठूंगा। सबसे ज्यादा याद तो ये करता है, क्या करता है, बाबा बाबा ही तो कहता है ना। ब्राह्मणों के लिए क्या है, केवल बाबा है, ब्राह्मणों का जीवन ही बाबा है। लेकिन बाबा कहते हैं वो योग लगा पड़ा है लेकिन वो अनुभव नहीं कर पा रहा। तो बाबा कहते योग का अर्थ है स्नेह के स्वरूप में खो जाना है। सबसे ज्यादा याद वो कर रहा है लेकिन वो स्वरूप को उसने पहचाना नहीं है, इसलिए बाबा को कहना बाबा मैं आपका लाडला बच्चा हूँ। बाबा क्या कहते हैं, बाबा के सामने बच्चे आते कैसा भी है, गरीब भी है, छोटा भी है, बड़ा भी है, बाबा कहते ये मेरे सब लाडले बच्चे हैं, कल पहले वाले हैं, सिक्की लदे हैं, नूरे रतन है, बिछड़े हुए बच्चे हैं, कहाँ के इतने लाडले VVIP हैं। अब देखो एक VIP होगा उसके तो कितनी खातरी, लेकिन आपके बाबा कितनी खातरी करते हैं मालूम है, कितनी खातरी करते हैं। साकार में बाबा खुद सब बच्चों का ध्यान देते थे, बाबा बच्चों के पास जाते थे, बाबा कहते थे देखो देखो मेरे सब पटराजे बच्चे आ गए, पटराजे और पटरानियां। बाबा के टाइम पर सब जमीन पे सोते थे, तो बाबा कहते थे ये मेरे पट राजे और पट रानियां हैं। तो अभी अभी कहाँ सोते हो हैं, अभी क्या कहेंगे? ऐसे कहेंगे क्या? कौन है हम बाप के दिल तख्त नशीन राजे और रानी है? दिल तख्त नशीन हो ना, तख्त पर है ना, बाबा ने दिल तख्त पर बिठाया है। पर ऐसा नहीं क्यों, क्योंकि समय समय की बात होती है, ये मत सोचना। बाबा के टाइम तो बात ही अलग थी, तो सब उस टाइम बाबा के टाइम पर सब इस तरह से होता था। और हम लोग जब बाबा के टाइम आते थे तो यहाँ तो बाबा के समय पर इस प्रकार की ठंडी भी बहुत होती थी, साधन नहीं होते थे। हम सब अपने गर्म कपड़ा गर्म इतने बड़े बड़े बिस्तर लेकर के आते थे, और बाबा प्यार से बच्चों से मिलते थे, और बाबा बहुत प्यार करते थे बच्चों को। लेकिन बाबा कहते थे बाबा के घर में इतना कोना भी मिला ये बहुत बड़ा भाग्य। अभी तो बठियाँ नीचे होती है, ऊपर चारों धाम की यात्रा करने के लिए आते हैं, और चारों धाम की यात्रा करते हैं चक्कर लगाने के लिए आते हैं। और आप सबको तो 3 दिन का मौका मिला है बाबा के घर में रहने का, बैठने का, और चारों ही स्थान का अनुभव करने का। तो जब शांति स्तंभ पर जाते हैं ना, वहाँ पर एक बात का ध्यान रखना है, किसी को बातें नहीं करनी। दूसरा, वहाँ पर किसी को भी मोबाइल ऑन नहीं रखना है। तीसरी बात क्या होता है, आदत होती है ना 2-3 बार मुरली पढ़ने की, एक बार सुन ली और मोबाइल में मुरली होती है तो सोचते हैं वहाँ शांति स्तंभ पर मुरली मोबाइल में पढ़ ले। लेकिन वहाँ पर बाबा को थोड़ी मोबाइल दिखाना है, बाबा को थोड़ी दिखाना है। मोबाइल तो रखा है, उस समय बंद रखना है। वहाँ पर ना तो मोबाइल खोल के देखना है। बाबा ने जो त्याग और तपस्या किया है उसी स्वरूप का अनुभव करना है। शांति स्तंभ हमें अचल अडोल स्थिति का अनुभव कराता है। और दूसरी बात, ये प्यारी मातेश्वरी जी का महीना चल रहा है, मातेश्वरी जी ने किस प्रकार से त्याग और तपस्या से अपना जीवन बनाया। मातेश्वरी जी हमेशा कहती थी, एक तो हमें पुरुषार्थ में कभी भी अलबेला नहीं बना, दूसरा मातेश्वरी जी कहती थी कभी भी ब्राह्मण मीन्स सदा, हाँ जी, ब्राह्मण मीन्स सदा मर्यादाओं से भरपूर, कभी भी किसी बात में ना नहीं करना है। कई बार ना बाबा बच्चों की ड्यूटी के लिए, क्योंकि साकार बाबा ने बहने थी तो साकार बाबा ने मम्मा को जिम्मेवारी दी हुई थी कि सारा कारोबार यज्ञ का कारोबार संभालने के लिए, तो बाबा कई बार मम्मा को कहते थे मम्मा ये कार्य कराना है। तो मम्मा बहनों को बोलती थी तो बहनें कहती थी मम्मा हमको थोड़ी आता है ये काम, हमने कभी किया नहीं, हमको पता नहीं है। मम्मा कहती थी बाबा ने कहा है इसका मतलब आप में फेथ है, तब तो कहा है आप कर सकते हो। ना कहना मीन्स नास्तिक, आप कहो हाँ मम्मा हमें बताओ इसको कैसे करना है, हम सब करते हैं। तो जो कार्य करना होता था, जो कार्य नहीं हो सकता 15 मिनट में पूरा हो जाता था। फिर क्या होता था, बाबा खुद भी हर कार्य के अंदर खुद भी आके खड़े हो जाते थे। तो जहाँ बाबा खड़े होते थे ना, वहाँ पर सारे बच्चे दौड़ दौड़ के बाबा के पास आ जाते थे। कभी कभी बाबा आंगन में चक्कर लगाते थे ना, तो बाबा को ये नहीं होता था ये क्यों आए, तो सारे दौड़ के आते थे। बाबा कहते थे आओ बच्चे आओ बच्चे आओ बच्चे, सारे बच्चे आ जाएंगे तो फिर हर एक सोचता था हम बाबा का हाथ पकड़े, हर एक को लगता है ना। तो बाबा कहते आओ बच्चे बाप का हाथ पकड़ो। अब कितने लोग हाथ पकड़ेंगे, 2 ही तो पकड़ेंगे ना। बाबा कहते आओ बच्चे ऐसे हाथ कर देते, 5 बच्चे 5 उंगली पकड़ लेते, 5 बच्चे इधर 5 उंगली पकड़ लेते, और 10-20 यहाँ बाजू पे हाथ रख लेते, और कुछ इधर हाथ रख लेते, कुछ कंधे पर रख लेते। बाबा खड़े हो जाते, कहते देखो सबसे बड़ा बछड़ेवाल कौन है। बाबा कहते सबसे बड़ा बछड़ेवाल मैं कितना खुश नसीब हूँ, मेरे जैसे इतने बच्चे कहाँ मिलेंगे किसको। फिर बाबा कहते थे विराट रूप देखना हो तो ये देखो। फिर जब कभी आप देखते ना केक काटते हो तो क्या करते हो, केक काटने के लिए 4 दीदियां 5 भाई जब आगे होंगे, बाकी क्या करते, एक दूसरे के ऊपर हाथ लगाते रहते ना, हर एक सोचता हमारा तो पार्टिसिपेशन तो हो गया। लेकिन बाबा कहते हैं बाप का सच्चा सच्चा हाथ पकड़ वही सकता है जिसकी बुद्धि बिल्कुल क्लियर, जिसके अंदर कोई भी प्रकार का माया का छल कपट नहीं है, जिसके अंदर कोई भी प्रकार के इधर उधर के अट्रैक्शन नहीं है, तो बाप का हाथ सदा उसके हाथ में है और बाप भी बच्चों को अपने हाथ पकड़ करके चलाते हैं और वही बाप की छत्र छाया में है। तो बाबा कहते हैं मेरे लाडले बच्चे हैं, कितना भी कुछ करते हैं लेकिन बाप अपने बच्चों को छत्र छाया में रखता है। कभी कभी देखते हैं कोई बच्चे शरारती होते, हाथ छोड़ करके भाग जाते हैं, तो माँ बाप क्या करते हैं, उस बच्चे को दौड़ करके पकड़ लेते हैं। तो ऐसे यहाँ भी कई कई बच्चे ऐसे होते हैं, बुद्धि इधर लग गई, कहाँ चली गई, डाइवर्शन हो गया, एक तरफ से दूसरी तरफ जाने लगती हैं। तो बाबा याद दिलाते हैं माया की छाया से बचना, कभी भी ऐसी बातों में जाकर के अपनी अंदर की अवस्था को ना तो ढीला करना है, ना अपनी बुद्धि को इधर उधर घुमाना है। बाबा जो दे रहे हैं उसकी पालना का अनुभव करना है। तो आपका फिर से स्वागत है और अभी आप सबका मुख मीठा कराया जाएगा। बाबा के पास आते थे तो बाबा बच्चों को टोली खिलाते थे। टोली मालूम है टोली क्या है? आप कौन हो बाबा के बच्चे? लाडले बच्चे, सिक्की लदे बच्चे, कौन बच्चे हो? सेंटर पर तो रोज टोली नहीं मिलती है ना, जब कोई बड़ी बहन आएगी तब मिलेगी। यहाँ क्लास में तो रोज क्लास के बाद टोली मिलती है। बाबा बच्चों को टोली खिलाते थे और बाबा कहते आओ मेरे टोल पुट बच्चे। टोल पुट समझते हैं, जैसे गुजराती में होता है ना, है क्या बोलते हैं टोली को, क्या बोलते हैं मिठाई को, क्या बोलते हैं गुजराती में, हैं मिठाई, हाँ मिठाई बोलेंगे ना, आओ मिठाई खा लो, है अच्छा। बाकी भाषा में कुछ और बोलते हैं, यहाँ सिंधी में टोली मीन्स मिठाई, मीठा। बाबा कहते इतने वर्षों के बाद, कलप के बाद लाडले बच्चे हैं, कितने मीठे बच्चे हैं। तो बाबा कहते थे सब मेरे टोल पुट हैं। बाबा की भाषा तो इतनी प्यारी है, दुनिया कोई भी कॉपी करे कर नहीं सकती है ना। ब्राह्मणों की भाषा, ब्राह्मणों के नियम, ब्राह्मणों की मर्यादा, ब्राह्मणों का चाल चलन, वो ऐसा है दुनिया कॉपी कर नहीं सकती है। कितना भी कॉपी करे, कोई भी कहे मैं ब्रह्मा कुमारी हूँ, लेकिन उसके चेहरे से मालूम पड़ जाता है ना। तो बाबा हमेशा बच्चों को अपने हाथ से टोली खिलाते थे और बाबा के टाइम पर, दादी के टाइम पर जब आते थे ना बच्चे मिलने, तो कहेंगे बाबा, कभी कभी बाबा आंगन में खड़े होते थे, दादी भी आंगन में खड़ी होती थी, दादी मिलती थी, फिर कहते दादी से मिलने जा रहे, अरे अभी तो मिले हो, कहते टोली कहाँ खाई है, कहते ना टोली हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है, ठीक है ना। तो अच्छा, तो आप सबको टोली मिलेगी। लेकिन एक बात और बता दें कि अहमदाबाद, अन्य स्थानों पर वहाँ का जो मौसम होता है वो तो गर्म होता है, और यहाँ माउंट आबू का मौसम कैसा है, ठंडा है ना, अच्छा है ना। और मन क्या करता है, बाहर घूमे, ऐसा करता है नहीं? कभी कभी होता है ना सुबह तैयार, जल्दी तैयार हो जाते हैं, वॉक करने चले जाते हैं। एक बात आपको ध्यान बता दें, जब सुबह सुबह वॉक करने जाते हैं ना, कभी कभी ऐसा होता अकेले कभी किसी को नहीं जाना दो, क्योंकि हम जहाँ रहते हैं ये माउंट आबू ये जंगल है, बाबा ने जंगल को ब्राह्मणों के लिए मंगल बनाया है, तो जंगल में कौन रहते हैं ना, तो वो कभी कभी अपने बच्चों के लिए पानी के लिए नक्की लेक के पास आते हैं। इसलिए आपके पास तो नहीं आएंगे, लेकिन जब भी जाना हो दो या तीन जाओ, अकेले नहीं जाने का। वैसे तो ग्रुप के साथ आप सबको ले जाएंगे, नहीं तो आपको देख करके खुश हो जाएंगे, कहेंगे हमें भी योग की दृष्टि दे दो, फिर उनको ऐसे अच्छे लोग मिल जाएंगे तो कितना खुश होंगे, ठीक है। कोई आने वाला नहीं है, लेकिन पहले से ध्यान देते हैं। कभी भी वो भालू होता है, आता नहीं है, लेकिन वो कभी नक्की लेक के उस साइड में, नक्की लेक के भी दो साइड है, एक साइड है जो जंगल की तरफ है, कभी गलती से वहां चले जाते हैं ना, तो वो अपने बच्चों के साथ घूमने और पानी पीने के लिए निकलते हैं। तो कभी कभी है, कभी होते भी है, क्योंकि उनका राज्य, अपना राज्य कहाँ है, यहाँ पर है ना। अपना राज्य सतयुग में तो है ही है, लेकिन अपने बाबा के घर में अपना ही घर है। तो बाबा कहते यहाँ आसपास घूमो, अपने ही घर में बैठो, तपस्या का टाइम मिला है तो यहाँ पर बैठ के तपस्या करो। अच्छा, ओम शांति।